ओम शांति।
एक तपस्वी किसी पहाड़ पर एकांत में तपस्या करता था। बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहा था और एक दिन एक झाड़ के नीचे तपस्या करते करते उसके सिर पर झाड़ के कुछ सूखे पत्ते, कुछ झाड़ की टालियां गिरती है और वो ऊपर देखता है तो पाता है कि एक कौवा और एक दूसरा पक्षी सारस, हंस की तरह जो होता है, क्रेन जिसको कहते हैं, ये दो पक्षी आपस में लड़ रहे हैं झाड़ की किसी टहनी पर। और उसे क्रोध आता है जब वो देखता है कि ये दो पंछी झाड़ पर झगड़ा कर रहे हैं और उनके झगड़े के कारण झाड़ के कुछ पत्ते, कुछ डालियां, कुछ टहनियां उसके सिर पर गिरी। तो क्रोध में आकर वो उनकी तरफ देखता है, उसकी भ्रुकुटी से आग का गोला निकलता है और वो दोनों पक्षी जलकर भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही ये घटना होती है उस योगी को बहुत खुशी होती है। पहली बार ऐसा हुआ है, उसको लगता है मुझ में कितनी शक्ति आ गई, कितनी पावर आ गई कि जैसे ही मैंने दृष्टि दी वो पंछी भस्म हो गए, जलकर राख हो गए, मुझ में इतनी पावर आ गई है। कुछ दिन में वो गांव में जाता है भिक्षा मांगने और एक द्वार पर पहुंचता है और वहां कहता है भिक्षाम देही, तो अंदर से एक माता का आवाज आता है। वो उसको कहती है, मैं व्यस्त हूं, आप थोड़े देर रुकिए। तो वो योगी सोचता है मुझे वेट करने के लिए कह रही है, शायद इसको पता नहीं मैं कौन हूं, कितना पहुंचा हुआ योगी हूं, कितनी मेरी पावर है। और जब वो ये सोच ही रहा था तो अंदर से माता का आवाज आता है कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, आप थोड़े देर रुकिए, परंतु मैं वो पंछी नहीं जिसको आप जला देंगे। तो उस योगी को आश्चर्य लगता है, इस माता को कैसे पता चला, यह तो बात एकदम एकांत में हुई थी, वो भी पहाड़ पर, जब मैं झाड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और अपनी शक्ति से उन दो पंछियों को मैंने जला दिया। तो वो माता कहती है कि तुम वेट करो, बाकी वो मैं पंछी नहीं हूं जिसको तुम जला दोगे। तो उसे आश्चर्य होता है। वो माता बाहर आती है थोड़ी देर के बाद, तो उसके चरणों में झुकता है और कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं मन में यह सोच रहा था, और आपको यह कैसे पता चला कि कुछ दिनों पहले मैंने दो पंछियों को जलाकर भस्म कर दिया था। तो वो माता कहती है, ये शक्तियां मुझे सेवा से प्राप्त हुई है, मैं योग नहीं जानती, मैंने कभी कोई योग किया नहीं, ना ही मैं आपके जैसी सन्यासी हूं, मैं अपने पति की सेवा करती हूं, पति से पहले अपने पिता की सेवा करती थी और इस सेवा करते करते ही मुझे ये शक्तियां प्राप्त हुई है कि सामने वाला क्या सोचता है मैं उसके विचारों को पढ़ सकती हूँ। ये सिद्धियां मुझे अपने इस कर्म से प्राप्त हुई है। और वो महिला उस सन्यासी से कहती है, यदि इसके विषय में तुम्हें बहुत जानना है तो यहां से थोड़ी दूर पर एक व्याध है, एक शिकारी, उससे तुम्हें इन शक्तियों का ज्ञान होगा। तो वो सन्यासी ये सोचता है, विदा लेता है और सोचता है कि मुझे और व्याध सिखाएगा कोई शिकारी जो हिंसक है, जो प्राणियों को मारता है, वो मुझे क्या सिखाएगा। फिर भी वो जाता है और जाकर देखता है तो शॉक हो जाता है। वो जो व्याध होता है शिकारी, वो मांस काट रहा है। सन्यासी सोचता है, ये और मुझे सिखाएगा, इतना पापी, इतना विकारी व्यक्ति, और उस माता ने मुझे इसके पास भेजा भेजने के लिए, सीखने के लिए। तो वो वहां जाकर खड़ा हो जाता है। तो वो शिकारी, वो व्याध कहता है, आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, मैं पहले अपना काम पूरा करता हूं। तो वो अपना काम पूरा करता है, फिर वो उसे अपने घर ले जाता है और फिर उसे कहता है कि आप थोड़े देर रुकिए, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं इनकी सेवा करता हूँ, उनको मुझे भोजन खिलाना है, वो भोजन खिलाने के बाद फिर मैं आऊँगा। तब तक सन्यासी वेट करता है। वो अंदर जाता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, सब कुछ करके बाहर आता है, फिर कहता है, बोलो आप क्या जानना चाहते हो। तो सन्यासी कहता है, मैं ज्ञान सुनने आया हूँ। तो वो व्याध उसको थोड़ी देर में ऐसे ज्ञान के गुह्य राज समझाता है, सिखाता है, बताता है, जिनका वर्णन शास्त्रों और उपनिषदों में किया गया होता है। महाभारत में इसे व्याध गीता कहा जाता है। जो उस व्याध ने, व्याध अर्थात शिकारी, उस व्याध ने उस सन्यासी को जो बातें बताई थी, और वो बातें थी कर्म योग की। वो एक माता थी जिसने अपना कर्म करते करते, अपना दैनंदिक कर्म करते करते, निस्वार्थ भाव से कर्म करते करते, डिटैच रहकर कर्म करते करते, उन सिद्धियों को पा लिया जो एक योगी ने सन्यासी बनकर और तपस्या कर कर पाई थी। और दूसरा ये व्याध था। सन्यासी उससे पूछता है, फिर आप इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनाने के बाद भी ऐसा कृत्य क्यों करते हो। तो वो कहता है, परंपरा से हमारी पीढ़ियों में ये कर्म है, परंतु मैं इस कर्म को संपूर्ण अनाशक्ति से करता हूं। मेरा इस कर्म के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, प्रेम से करता हूं, निस्वार्थ भाव से करता हूं। ऐसा वह व्याध उत्तर देता है। और वो ये भी कहता है कि यदि मैं नहीं मारूं तो कोई और तो मारेगा। और ये मेरा पारंपरिक, हमारे पीढ़ियों में दादा परदादा सब यही कर्म करते थे, मुझे पता है ये कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु जब कर रहा हूं इससे भी मैं डिटैच हूं, अनासक्त हूं। उसे वो ऐसे बहुत सारी बातें, ये सारे भक्ति मार्ग के शास्त्र द्वापर में लिखे गए हैं, पर तब से निस्वार्थ कर्म, अनासक्त कर्म की चर्चा मनुष्यों ने की है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक कर्मयोगी जीवन पर। कर्मयोगी जीवन कैसा होता है? एक है कर्म संन्यास, एक है कर्मयोग, एक है कर्म को ही छोड़ देना, सन्यासी बन जाना, सन्यास ले लेना, संसारिक कर्म सारे बंद, परंतु वास्तव में कर्म सन्यास कुछ होता नहीं, सोचना भी कर्म है। बोलना भी कर्म, और इस संसार में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो सब कुछ करते हुए भी योगी है। एक तो वो है जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, जंगल में जाकर अकेले तपस्या करते हैं, वो तो बहुत आसान है। परंतु कर्म कर्मातीत यदि बनना है तो उसकी विधि है पहले कर्मयोगी बनो। बिना कर्मयोगी बने कर्मातीत नहीं बन सकते। कर्मों से परे जाना है तो पहले कर्मयोगी बनना पड़ेगा। कोई अगर सोचे मुझे कर्मातीत बनना है, सारे कर्मों को मैं छोड़कर केवल तपस्या करूंगा, वो नहीं होगा। सारे दैनंदिन कर्म करते हुए, सारी ड्यूटीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए कर्म करना, कर्म योगी जीवन बिताना, ये वास्तव में योग है। और कर्म योगी सर्वोच्च अवस्था है। हट योगी कर्म योगी नहीं होते, वो शरीर को पीड़ा देते हैं। कर्म संन्यास करने वाले कर्म योगी नहीं बन सकते। एक योगी था, वो भी वैसे ही जंगल में रहता था। 10-15 साल एकांत में उसने तपस्या की और बाद में उसने सोचा कि मैं क्रोध से मुक्त हो चुका हूं। जंगल में अकेला तपस्या करता है, क्रोध का कोई कारण ही नहीं था। 10-15 साल तपस्या करते रहा, उसे लगा कि मैं सारे विकारों को मैंने जीत लिया। तो एक दिन वो नीचे उतरा पहाड़ी से और गांव में गया। गांव में जाते ही भिक्षा मांगने लगा, तो वहां एक छोटा सा बच्चा था पालने में जो रो रहा था। तो उसने उसको कहा, थोड़ा चुप हो जाओ। 15 साल तक कभी क्रोध नहीं किया था इस सन्यासी ने, परंतु जब बच्चा रोता रहा तो अब धीरे धीरे उसको क्रोध आने लगा। बच्चा जब जोर से रोने लगा तब उसने उसके ऊपर बहुत डांटा उस बच्चे को। वो बच्चा पालने में, और फिर उसको लगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोचता था मैं क्रोध से मुक्त हो गया, पर यहां तो छोटे से बच्चे ने मुझ में क्रोध ला लिया। अर्थात वो क्रोध से मुक्त हुआ ही नहीं था, खाली क्रोध दब गया था, दमन हुआ था, सपरेशन। जब कोई अकेला ही रहे तो क्रोध क्यों आएगा? क्रोध तो तब आता है जब सबके बीच में है, और क्रोध मुक्त होना अर्थात सबके बीच में रहते हुए भी संबंध संपर्क में आते हुए क्रोध से मुक्त होना, ये वास्तव में क्रोध मुक्त अवस्था है। तो अकेले चले जाना और वहां बैठकर तपस्या करना, ये नहीं, सबके बीच में, सबके साथ, भीड़ में, तूफान में, आंधी में, वहां पर सब कुछ करते हुए योगी अर्थात कर्मयोगी। तो बाबा ने हम सबको कर्मयोगी बनाया है। बाबा ने ये नहीं कहा एक जगह बैठकर खाली तपस्या करो। क्या करना है? कर्मयोगी बनना है। तो इस कर्मयोगी बनने के लिए हम कुछ बातें देखेंगे, ऐसी 7 बातें जो आवश्यक है कर्मयोगी जीवन में। सबसे पहला, जो पहले ही बताई, निस्वार्थ कर्म। श्रेष्ठ कर्म वो है जो निस्वार्थ कर्म है। कर्मयोगी जीवन अर्थात निस्वार्थ कर्म, जो भी हम करें सबके कल्याण के लिए हो, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जिससे बहुतों का हित हो और बहुतों को सुख मिले, स्वार्थ रहित कर्म हो, जिसमें स्वार्थ समाया ना हो, तो अपने कर्मों को निस्वार्थ करने चाहिए, ऐसे कर्म जिससे असंख्य आत्माओं का कल्याण हो जाए, असंख्य आत्माओं को बाबा का परिचय मिल जाए, भगवान का परिचय मिल जाए, असंख्य आत्माएं इस ज्ञान को समझे, असंख्य आत्माएं इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें, असंख्य आत्माएं भगवान से मिलन मनाए, असंख्य आत्माएं मधुबन पावन भूमि तक पहुंच जाए, ऐसी भावनाएं शुद्ध भावना। और जो भी शुद्ध भावना होगी वो पूर्ण अवश्य होगी, परंतु जिस भावना में स्वार्थ है वो पूर्ण नहीं होती। जो भावना जितनी निस्वार्थ, जो सेवा जितनी निस्वार्थ, जो कर्म जितना निस्वार्थ, पति ज्ञान में चले, पत्नी ज्ञान में चले, बच्चे ज्ञान में चले, माँ बाप ज्ञान में चले, मित्र ज्ञान में चले या संबंधी ज्ञान में चले, ये इच्छाएं बहुत अच्छी है, परंतु निस्वार्थ हो, जितनी वो निस्वार्थ होगी उतनी ही वो पूर्ण होगी। तो हमारे हर कर्म स्वार्थ रहित हो, यदि उसमें छोटा छोटा स्वार्थ है उसको हटाते जाना है, अपनी सारी सेवाओं को निस्वार्थ कर दो, उसमें बहुत बल है। एक है अपने लिए सोचना, मेरा क्या कल्याण होगा, मेरा क्या फायदा होगा, थोड़ा मेरा को हटा के सबका कल्याण कैसे होगा, सबका फायदा कैसे होगा, ऐसे कर्म जिससे संसार की सभी आत्माओं की दुआएं प्राप्त हो, वो कर्म होंगे निस्वार्थ। तो सबसे पहली चीज है निस्वार्थ कर्म। जैसे वो महिला, वो माता कहीं योग सीखने नहीं गई, परंतु उसका जो कर्म था पति की सेवा, निस्वार्थ भाव से पति की सेवा करती रही, बस वो सेवा करते करते ही उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो सारी सेवाएं, सारे कर्म, सारा वर्क, एक्टिविटीज, एक्शन, ड्यूटीज निस्वार्थ, ये सबसे पहली चीज है कर्मयोगी जीवन में। दूसरा डिटैचमेंट, अनासक्त भाव, जैसा वो व्याज, जैसा वो शिकारी, देखने को देखा जाए तो बहुत निकृष्ट कर्म है, परंतु वो कहता है मैं इस कर्म से भी डिटैच हूं, जो भी कर्म करे उसमें डिटैचमेंट है, आसक्ति ना हो जाए। सेवा की सफलता प्राप्त हुई और उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी में डूब गए। सेवा की सफलता हुई बहुत खुशी, सेवा की असफलता हुई दुखी। किसी को ज्ञान सुनाया वो ज्ञान छोड़कर चला गया, बहुत दुखी। किसी को ज्ञान सुनाया वो बहुत अच्छा पुरुषार्थी बन गया, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत खुशी और एकदम दुख, दोनों ना बीच में स्टेबल, डिटैच्ड। जो जितना डिटैच्ड है वो उतना ही स्टेबल रहेगा। तो अपने कर्मों में क्या चाहिए, अनासक्त भाव। कर्म कर दिया और डिटैच, कर्म से और कर्म के परिणाम, दो चीजें, एक्शन और उसका रिजल्ट, एक्शन और उसका फ्रूट, कर्म और उसका फल, इन दोनों ही बातों से अलग। ऐसे जब कर्म होंगे तो कर्मयोगी जीवन, बाकी जो कर्म करने के बाद उसमें अटैच हो जाए उसको छूट ही नहीं पाए। सेवा की फोटो लिए बहुत सारे, वो फोटो ही देखते रह रहे रोज, ये फोटो हमने ये सेवा की, ये भी अटैचमेंट है। सेवा की और उसी का वर्णन चालू है रोज, हमने ये सेवा की, हमने फला सेवा की, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने इसको ज्ञान दिया, हमने उसको ज्ञान दिया, हमने ऐसा किया, ये सेवा है, वो सेवा है। हमेशा हम बताते हैं, मम्मा 3 मास के लिए बैंगलोर थी और 3 मास में मम्मा ने बहुत सारी सेवाएं की और मम्मा 3 मास के बाद मधुबन वापस आई। मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा, अच्छी थी, फुल स्टॉप, नो डिस्क्रिप्शन, कोई विस्तार नहीं, कुछ नहीं। कैसी सेवा थी? अच्छी थी, फुल स्टॉप। कोई दूसरा होता तो हम यहां गए, हम वहां गए, हम ये किया, हमने वो किया, फिर इसको सुनाया, फिर ये प्रोग्राम किया, फिर पब्लिक प्रोग्राम किया, फिर भट्टी की, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर यहां किया, क्यों किया, ये किया, फला किया, ढला किया, फिर इसके फोटो ये है, फिर न्यूज़पेपर में खबर, उसकी कटिंग जेब में ये है। तो कर्म कैसे हो गया? अटैच्ड। कर्मयोगी अर्थात डिटैच्ड, अनासक्त कर्म, कर्म किए और भूल गए, फुल स्टॉप। वो तो दूसरे भाई ने बताया जो मम्मा के साथ गया था कि ये सेवाएं वहां हुई, परंतु मम्मा ने कुछ नहीं कहा। कैसी सेवा थी? अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, नो डिस्क्रिप्शन। नहीं तो हम सोशल मीडिया, उसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो। हाँ, सेवा के लिए आवश्यक है, परंतु इमोशनल अटैचमेंट भी ना हो सेवाओं में, उस तरह की परिणाम में। नहीं तो दुख भी होगा जब सेवा में असफलता होगी तब। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात सारे कर्म कैसे हो? डिटैच्ड। अभी अभी खेतों में काम कर रहे हैं, वहां से उठे अभी अभी मंदिर में, अभी अभी वहां से उठे अभी अभी ध्यान मग्न। स्वामी विवेकानंद ने अपने क्लास एक स्पीच में कहा है कि अभी अभी मंदिर में और अभी अभी खेतों में, अभी अभी खेतों में और अभी अभी जंगल में, वहां पर समाधि में मग्न हो गए। तो अभी अभी कोई गरीब मरीज है, उसकी सेवा कर रहे हैं। ये किया डिटैच, ये किया डिटैच्ड, वो किया डिटैच्ड, इधर से उधर, उधर से उधर, सब कुछ किया डिटैच्ड, कोई आसक्ति नहीं, फ्री, कोई वर्णन नहीं, अनासक्त। तो दूसरी चीज क्या है कर्मयोगी जीवन में? डिटैचमेंट। तीसरी चीज है सकारात्मक भाव, पॉजिटिविटी। चाहे जो भी हो रहा है उसमें क्या हो, कल्याण छिपा है। इस संसार में, ड्रामा में ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसमें अकल्याण है। अभी अभी संडे मुरली चली थी, एक्सीडेंट हो गया उसमें भी कल्याण है। जो कुछ हो रहा है जीवन में, डीप सीक्रेट्स उसमें समाने हुए, हिडन सीक्रेट, कुछ भी ऐसा ही नहीं हो रहा है, उसमें राज है। इसके लिए नो कंप्लेंट्स। एक माता थी, यज्ञ के शुरुआत की कहानी है, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, यज्ञ सिंध हैदराबाद कराची से माउंट अबू आया, उस समय एक माता थी जिसके घर में आग लगा दी गई थी, आग से घर जल रहा था और वो माता घर में थी और 2 छोटे-छोटे बच्चे थे पालने में। तो उस माता ने क्या किया, ऐसी एक बात कर दी जो कभी कोई सोच नहीं सकता। घर अभी बस इतना आग में झुलस रहा था, सब तरफ आग ही आग, आग ही आग, आग, वो अपने आप को कैसे बचाएगी? नीचे आग लग गई थी पूरी, तो उसने क्या किया, अपने जो दो बच्चे थे छोटे एकदम पालना में, उन दोनों को नीचे रखा और उसके ऊपर वो खड़ी हो गई और कूद कर बाहर आई और वो दोनों बच्चे मर गए। और उसके बाद वो ज्ञान में आ गए। तो उसने पूछा बाबा से, इसमें क्या कल्याण है, मैंने तो अपने दोनों बच्चों को मार दिया, उनके ऊपर खड़ी रह गए, कूद कर बाहर निकली। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा, अच्छा हुआ बच्चे मर गए। ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने कहा यदि वो ना होता तो ये भी ना होता। वो मर गए, पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, उस दुख ने ही उसको ज्ञान में लाया बाद में। यदि वो ना होता तो ये भी ना होता। उसके बाद ही तो डिप्रेशन में चली गई, उसके बाद ही तो उदास और दुखी हो गई, उसके बाद ही तो आत्मग्लानि अपराध भाव आ गया, गिल्ट कॉन्शियसनेस कि मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। एक मां ने, तो बाबा ने कहा वो ना होता तो ये भी ना होता। इसके लिए ड्रामा के हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है, हर नुकसान में फायदा छिपा हुआ है, जो हो रहा है सब हमारे ही जन्म जन्म के कर्मों का फल है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते ये नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। ड्रामा न्यायकारी है, इसमें कहीं पर भी कोई अन्याय नहीं हो रहा है। जन जन के हिसाब किताब है आत्माओं का। साधु जा रहा है, राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं कि राजमहल में जो चोरी हुई है तुमने की है, और उसे कारागार में डाल देते हैं। 7 दिन के बाद असली चोर पकड़ा जाता है साधु को जेल से बाहर, और वो वापस जाने लगता है। जब पकड़ा तब भी उसने कुछ नहीं कहा कि मुझे क्यों पकड़ा, मैं निर्दोष हूं। जब जेल में था तब भी कुछ नहीं कहा, और जब छोड़ दिया गया कि तुम चोर नहीं हो, चोर कोई और है, और वो चुपचाप जाने लगा। तो राजा ने पूछा, हे साधु रुको, मैंने तुम्हें जेल में डलवा दिया तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, अब जब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं तब भी तुम कुछ नहीं कहते, कुछ तो कहो। तो साधु कहता है, राजन इस जन्म में मुझे पता है मैंने कोई पाप नहीं किया, चोरी तो बहुत दूर की बात, परंतु उसके बाद भी आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ा और कारागार में डाला, ये मेरा किसी और जन्म का पाप था। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। यदि अभी कोई दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, क्यों दे रहा है, सूक्ष्म हिसाब है। इसलिए हर परिस्थिति में कल्याण देखना, पॉजिटिविटी, तो कर्मयोगी जीवन अर्थात सकारात्मक भाव, जो कुछ हुआ जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा सबसे अच्छा, द बेस्ट। दुखी होते रहेंगे, कब तक दुखी होते रहेंगे, कब तक उदास होते रहेंगे, कब तक दर्द में जीते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, पार्ट होते ही चला जाएगा। एक बच्चा घर में जन्म लेता है, जन्मते ही दो दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं इसके हार्ट में छेद है, दिल में छेद, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख खर्चा है, मां बाप गरीब है, पैसे नहीं है, सब तरफ से कर्जा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, सब कुछ घर बेच दिया, गहने बेच दिए, सब बेच दिया, सब कुछ बेचकर 5 लाख रुपए जमा किए, बच्चे का ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। ये बच्चा क्यों आया था? इसी जन्म में इसके पैसे लेके भाग गए होंगे, इसी जन्म में इसके पैसे वापस नहीं किए होंगे, तो पैसे लेने आया ना, बरबर पैसे लिए और चला गया। अब दुखी होते रहेंगे तो क्यों गया क्यों गया क्यों गया, कुछ होगा फायदा? होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। भक्ति में भगत समझते हैं सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। Thy will shall be done, जो तेरी इच्छा राजी तेरी रजा में। ये तीसरा और 5 है। चौथा, हर वो कर्म जो आत्माभिमानी स्थिति में किया जाए कर्मयोगी अकर्तव्य। कर्मयोगी अर्थात आत्माभिमानी स्थिति में किए हुए सारे कर्म, या फिर कर्मयोगी अर्थात जो अपने हर कर्म को सोल कॉन्शियस स्टेज में करे। मैं आत्मा हूं ये सब आत्माएं हैं, सोल कॉन्शियस विजन, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति में किए हुए सारे ही कर्म कैसे हैं? कर्मयोग। पांचवा, हर कर्म जो भगवान की याद में किए जाए, बाबा की याद में किए हुए हर कर्म, कौन से कर्म है? कर्मयोग। कैसे याद करेंगे कर्म करते समय बाबा को? कर्म करते समय कैसे याद करेंगे? मैं निमित्त हूं या करण करावन हार करा रहा है ये सोचकर, और याद में कर्म कैसे करेंगे? सब कुछ बाबा का है, और क्या सोचेंगे? काम करते समय क्या है? भोजन बनाते समय क्या सोचेंगे? अब ये बताएं, बाबा को, बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं, क्या करेंगे? हर कर्म को बाबा की याद के साथ जोड़ना। जो भी कर्म है, छोटे छोटे कर्म, या तो आत्माभिमानी स्थिति से या तो याद से जोड़ना। आईना देख रहे हैं, मस्तक मणि को देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो बाबा की किरणें ऊपर से आ रही है, बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं निमित्त हूं, बाबा बुलवा रहा हूं, भोजन बना रहे हैं तो बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं, धन कमा रहे हैं तो बाबा की सेवा अर्थ धन कमाया जा रहा है, स्नान करते समय मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में देवता हूं, इस मंदिर को धुलाई कर रहे हैं, चल रहे हैं तो हर कदम में पदम है, मुरली सुनते समय गॉडली स्टूडेंट, एक एक कर्म के साथ एक एक समान जोड़ने, या तो आत्माभिमानी स्थिति हो
या याद हो, दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, तो सोचना है कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसे भी परमात्मा वर्षा मिल जाए। मधुबन जा रहे हैं तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, सेवा केंद्र पर जा रहे हैं तो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। एक एक कर्म के साथ एक एक समान या बाबा की जाए। तो चौथा है आत्माभिमानी स्थिति, पांचवा है बाप की, छठवा है श्रीमद। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म कैसा हो, श्रीमद अनुसार। श्रीमद के अनुकूल वो ये ना कहे कि मुझे पता नहीं था ये श्रीमद है, गलती कर देना और फिर कहना कि मुझे पता नहीं था। तो सारे कर्म कैसे हो, श्रीमद कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी श्रीमद, मुरली से। और जो मुरली नहीं सुनते उनको श्रीमद पता नहीं रहेगी, और जो कभी कभी सुनते हैं वो कभी कभी भी पॉइंट मिस कर देंगे और फिर उसी पॉइंट के आधार पर गलती होगी। आज कहा ना, भूले इतनी की है तुमने, बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। एक हंसी की बात है, एक दादा थे मधुबन में, तो बाबा ने एक बार सबको आइसक्रीम खिलाई, तो सबने आइसक्रीम बहुत अच्छे से खाई। फिर बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे आइसक्रीम खाते खाते बाबा को भूल गए, तो वो दादा ने बाबा के पास कहा, बाबा एक बार फिर से आइसक्रीम खिलाओ, हम आपकी याद में खाएंगे। तो भोजन कर रहे हैं तो याद में, भोजन बना रहे हैं याद में, पानी पी रहे हैं याद में, बात कर रहे हैं आत्माभिमानी स्थिति। हर कर्म के लिए क्या श्रीमत है, ढूंढना है, समझना है, जानना है, संसार करना है। तो श्रीमत लास्ट पॉइंट है निमित्त भाव। हर कर्म करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं, दूसरों को ये कहां आएगा, मेरे सिवा ये कोई नहीं कर सकता है। निमित्त भाव, निमित्त अर्थात वो करा रहा है, हम कर रहे हैं, वो चाहे तो किसी और से भी करा सकता है, वो चाहे तो हमको हटाकर किसी और को ये काम दे सकता है। ये तो हमें दिया, ये हमारा भाग्य, ये सेवा हमें मिली, ये भाग्य है। तो कर्म योगी जीवन में ऐसी ये सात चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बताई कौन सी, निस्वार्थ, सेल्फलेस। और सेल्फलेस सर्विस से जो खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है। संसार में भी लोग गरीबों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कितनी खुशी मिलती है उनकी। हॉस्पिटल में जाओ और सबको फूल दे के आओ तो खुशी मिलती है, फल बांटो खुशी मिलती है, भोजन दो खुशी मिलती है। संसार में निस्वार्थ सेवा करते हैं सोशल वर्कर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट बाबा कहते हैं। पहला निस्वार्थ, दूसरा अनासक्त, डिटैच्ड। कर्म कर दिया, भूल गए, कुछ याद नहीं, भूल गए, भूलते जाओ, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ। सुना तो नहीं बैठो, उसका वर्णन नहीं करते बैठो, हमने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, हमने ये किया, ऐसा भी किया, वैसा भी किया। तीसरा, तीसरा सकारात्मक भाव, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, कल्याणकारी भाव, हर बात में कल्याण। चौथा, चौथा आत्म अभिमानी स्थिति, फुल कॉन्शियस स्टेज। अच्छा, परमात्मा याद में किए हुए सारे कर्म महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, कर्म योगी है, जीवन है। अगला, श्रीमद अनुसार किए हुए सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है, कर्म योगी जीवन का आधार है। अगला, निमित्त भाव इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं यह फीलिंग निमित्त है, तो कर्मयोगी जीवन में ऐसी ये सात चीजें होना अत्यधिक आवश्यक।